मेलबर्न में हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत को कैसे जीवित रखा जाए, इसके लिए एक सोसाइटी है, मेलबर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सोसाइटी। इस संस्था के साथ जुड़े हैं शास्त्रीय संगीत के गायक और वादक। इस संस्था का वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है, तो इसी सिलसिले में बात की है सौरभ मिश्रा जी के साथ में, जो इस संस्था के कहा जा सकता है कि कर्णधार हैं। सौरभ जी नमस्कार।
नमस्कार अनिता जी।
सौरभ जी, आपकी एक संस्था संगीत से जुड़ी हुई है, मेलबर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सोसाइटी। मकसद क्या है ये तो मैं अभी आपसे पूछती ही हूँ। और आप हारमोनियम बजाते हैं?
जी जी अनिता जी, संस्था तो 4-5 साल पुरानी हो गई है
जी,
और मैं हारमोनियम बेशक बजाता हूँ, क्लासिकल हारमोनियम में जो जो वोकलिस्ट होते हैं उनका साथ देता हूँ
जी,
और साथ में खुद भी सीखा हुआ है, वोकल सीखा हुआ है मैंने।
जी, आपने वोकल तो सीखा हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे हिंदुस्तानी संगीत में, तो हारमोनियम की तरफ ये जो रुझान है आपका, ये कैसे हुआ, शुरुआत इसकी कैसे हुई?
अनिता जी, सच पूछे तो अब मुझे तो ख्याल भी नहीं है कि कब से बजाना शुरू कर लिया। बजाते बजाते एक मकाम ऐसा आया कि किसी एक मतलब क्लासिकल वोकल में कहा कि भाई आप बजा पाएंगे क्या? मैंने कहा हाँ शायद बजा लूंगा। तो वहां से सिलसिला फिर इस तरफ का शुरू हो गया, वरना जैसे खुद गाते हुए बजाना, गजलें गाना, इन सब में तो खुद हम बजा लेते हैं, लेकिन क्लासिकल वोकल में वो वोकलिस्ट अलग से गाते हैं और हारमोनियम अकॉम्पनिस्ट अलग से बजाते हैं। तो जी, वो सिलसिला मेरे ख्याल से 5-7 साल से ऐसे चल रहा है।
तो मतलब कितना आसान होता है किसी के साथ संगत करना?
देखिए, ऐसा है कि जब आपको राग पता है तो उसमें कौन से नोट्स यूज होते हैं वो आपको समझ में आ जाता है, मतलब आरोह में क्या होता है, अवरोह में क्या होता है, कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, क्या चलन होता है, तो इन सब चीजों का आभास आपको हो जाता है राग के बस नाम लेने से ही। और उसके बाद किस ताल में वो हो रहा है, तो उसके हिसाब से ऐसा होता है कि हम, ये जरूरत नहीं है हमें कि हम हूबहू वही बजाएं जो 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 वोकलिस्ट गा रहे हैं,
गा रहे हैं जी।
और आपको पता होगा नेता जी कि ये हमारा जो आर्ट फॉर्म है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का, ये एक बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज्ड आर्ट फॉर्म है। तो इसमें खुद गाने वाले को नहीं पता होता कि आगे क्या गा रहे हैं।
मैं आपसे यही पूछने जा रही थी कि जब आपने कहा कि रागों का ज्ञान तो है, आरोह अवरोह भी पता है और उसमें क्या क्या ताने आ सकती हैं ये भी मालूम होता है, लेकिन जो हमारे कलाकार होते हैं, गायक होते हैं, वो उस समय जो आपने कहा जैसे कि इम्प्रोवाइज करते हैं, तो वो संकेत आप कैसे उसको ग्रहण कर पाते हैं?
जी, थोड़ा सा आभास रहता है कि भाई एक किसी ने जैसे कोई तान शुरू की, तो चूंकि हमने भी सीखा हुआ है तो हमको भी एक आभास है कि ये तान जहाँ से शुरू हुई है, जिस पैटर्न में शुरू हुई है, पैटर्न में अगला क्या आएगा, फिर अगला क्या आएगा, तो वो थोड़ा सा आभास हो जाता है, वो उंगलियां अपने आप उसमें
चल पड़ती हैं।
जी, और खास करके जब जब गति ज्यादा होती है, जब तो उसमें तो फिर मतलब सोचने का समय नहीं मिलता है।
कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि वो अनुभव ही अलग तरह का था?
बेशक ऐसा हुआ है, और कभी कभी तो मतलब एक मूर्छना सी हो जाती है स्टेज पर बैठे हुए हैं सुन रहे, क्योंकि मुझे खुद पसंद इतना है, ये संगीत इतना पसंद है कि एक्चुअली जी सच पूछे तो एक तरह से वो चैलेंज भी हुई होता है। जैसे मैंने कभी अपने गुरुजी के साथ बजाया तो उनको सुनने में मैं इतना तल्लीन हो जाता हूँ तो
जी।
मैं हो गया था स्टेज पर, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि भाई बजाइए भाई, सुनिए कम, बजाइए ज्यादा।
संगीत में ढल जाना, उन रागों में खो जाना और फिर उसके साथ खुद भी बजाना है, तो हम लोग तो जो सुन रहे हैं वो खो जाते हैं, आपको तो ताल मिलानी है उनके साथ में, तो
बिल्कुल। और मेरे ख्याल से मैं तो मुझे लगता है कि जो अपने पे संगत देते हैं उनकी तो गति और मुझसे ज्यादा खराब रहती है, क्योंकि उनको तो पूरा एकदम जो बीट है उसको एकदम बांध के रखना होता है।
बिल्कुल,
तो वो अगर वो भी बह गए उसमें आवेश में तो फिर मुश्किल होती है।
तो बहुत कुछ संभाल के तो रखना ही है।
नेता जी, एक अनुभव था, मतलब थोड़ा पब्लिक में हुआ था तो मैं शेयर कर सकता हूँ कि तो मैं गा रहा था उस समय, और उस दिन पता नहीं क्या कुछ लगा कि हाँ कुछ स्वर आज ठीक लग रहे हैं, और करते करते एक मकाम ऐसा है कि जब मैंने अंतरा लिया, जब जब तार सप्तक का साथ छुआ,
जी
तो मैं रो पड़ा वहीं पर।
ओ
और ऑन स्टेज मैं बिल्कुल, मेरे आंसू ही ना रुके, इतना कुछ। और ये नहीं कि कुछ उदास था, नहीं, बहुत कुछ प्रफुल्लित सा कुछ
हाँ
अनुभव था।
हाँ
मैं खत्म ही नहीं करता, मतलब वहां से आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया, वहां से मतलब आंसू रुके ही नहीं रहे।
क्या
तो मैं
बात।
जब मुझे लोगों ने घेर लिया वहां पर कि अरे जो आप महसूस कर रहे थे हम भी वही महसूस कर रहे थे। उस दिन मैंने अपने गुरु जी को फोन किया कि भाई ये क्या हुआ ये। उन्होंने कहा हाँ बेटा होता है कभी कभी ऐसा ऐसा, और मैं तो चाहूंगा कि और भी होगा।
जी, संगीत आपको जोड़ देता है किसी देवीय शक्ति के साथ में। उसका जो आनंद मिलता है वो सुनने वाला और सुनाने वाले दोनों ही जानते हैं। उस भावना में बह जाना आपको तो अनुभव भी हुआ और ऐसे ही कई सुनने वालों को अनुभव होता है। अब आप अपना ये जो कार्यक्रम आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। क्या है इसका उद्देश्य और किस तरह से आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं?
देखिए, ये जो मेलबर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सोसाइटी है, इसको हमने दो तीन नजरियों से हमने इसको शुरू किया था। एक तो ये था कि हम बस चाह रहे थे कि जो अच्छे आर्टिस्ट आते रहते हैं, उस लॉकडाउन से पहले आते रहते थे, तो
जी
उनको एक अच्छे अच्छे वेन्यूज में हम फीचर कर सकें, अच्छे से उनको बैठ करके हम सुन सकें। दूसरा था मकसद कि मेलबर्न से आने वाले सालों में कोई वर्ल्ड क्लास हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक म्यूजिशियन उबर के निकले,
क्या बात है, क्यों नहीं, क्यों
क्योंकि
नहीं।
जी, और वो काम हो रहा है, वो भी अच्छा काम हो रहा है।
हाँ
और तीसरा एक मकसद था कि भाई अब इतने लोग साथ में जुड़ जाएं कि एक समय ऐसा भी आए कि भाई और लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कॉन्सर्ट्स और हम बैठ करके सुन रहे हैं।
जी
तो अब जो फेस्टिवल जो होते हैं, क्लासिकल म्यूजिक के फेस्टिवल्स होते हैं, ये
जी
आप जानती होंगी कि लगभग सभी हिंदुस्तान के प्रमुख शहरों में फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे
हाँ
पुणे में होता है, कलकत्ते में होता है, दिल्ली में होता
जी
है, और हिंदुस्तान से बाहर कुछ एक शहर हैं जहाँ पर इस तरह से फेस्टिवल्स हो रहे हैं। तो सैन फ्रांसिस्को में है, लंदन में दरबार होता है, तो हमने बस ये चाहा कि मेलबर्न में भी होना चाहिए। तो 2020 में हमने अपना पहला इसमें अटेम्प्ट किया और बहुत सक्सेसफुल रहा। हमने
जी
हिंदुस्तान से जाने माने आर्टिस्ट को बुलाया, अश्विनी भिड़े देशपांडे जी आई थी,
जी
तो बड़ा अच्छा रहा हमको, मतलब हमारा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। और तो फिर हमने सोचा था कि हर साल दो साल में एक बार हम इस तरह से कुछ करेंगे, लेकिन अब लॉकडाउन शुरू हो गए तो जो साल
हाँ
का सोचा था वो 2 साल तो हो ही गए। पर
जी
अब इस बार हमने कहा कि नहीं, करते हैं फिर से। और जाहिर है कि हम बाहर से किसी को बुला नहीं पाएंगे इस बार, लेकिन
हाँ
हमारे लोकल ही इतने अच्छे लेवल के कलाकार हैं यहाँ पर कि उनको लेकर के हमने ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। तो करीब 15-20 लोकल कलाकार हैं,
जी
तो कोई वोकलिस्ट हैं, कोई वायलिनिस्ट हैं, कोई एक हमारे मित्र हैं निकलस, वो तो
जी
सैक्सोफोन पे क्लासिकल म्यूजिक बजाते हैं।
हाँ
बड़े सारे हैं सरोद पे, हमारे दो बहुत अच्छे बजाने वाले हैं एक।
जी
तो इस तरह से हमारे पास अच्छे मजे कलाकार हैं, और बड़ा तो वी आर सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फेस्टिवल अगेन।
भारत में तो हर जगह फेस्टिवल्स होते हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न का नाम आएगा, इस फेस्टिवल से जुड़ेगा, तो क्या बात है, वो तो हम सबके लिए गर्व की बात हो जाएगी। आप इतनी मेहनत से ये सब कर पा रहे हैं, पूरी सफलता मिलनी चाहिए। ये शुभकामनाएं तो हमारी आपके साथ रहेंगी ही।
बहुत बहुत धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।